हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 9। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधरुणबिं बफला धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति देवेस्तवे वेदिसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवायतस्मे नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के मंत्र गाने वाले अंग पदक्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मन में जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो हमने देखा भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश कर चुके हैं और द्वारिका वासी अपने प्रेम के स्नेह के जो तड़प है उसको दिखा रहे हैं। भगवान को कहते हैं कि आप नहीं थे उस समय तो हम बहुत अनाथ हो गए थे, दुखी हो गए थे। अहो सनातात भवता स्मयद्वयम् त्रैविष्टपानम् अपि दूरदर्शनम्। क्योंकि आपका दर्शन जो है उसके लिए तो देवता भी तरसते हैं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो इतना सुंदर आपका मुख जब हमने देखा है तभी हम सनात हुए, तभी हम सुखी हुए हैं। और मुख भी कैसा है अत्यंत ही सुंदर बता रहे हैं। प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षण कि आप प्रेम से मुस्कुराते हो, स्नेह से हमें देखते हो। तो इस पश्चिम रूपम तव सर्व सौभाग्यम, आपके इस स्वरूप को देखकर हमें ऐसा लगता था कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा वास्तविक सौभाग्य उदय हुआ है। तो इसके बाद अब वो उस समय की याद दिला रहे हैं जब भगवान उनके साथ नहीं है। अभी तो ये बताया कि जब आपको देखते हैं आपके मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख के दर्शन होते हैं वही हमारा सौभाग्य है, परंतु जब आप चले जाते हो, बहुत ही सुंदर भगवान के विरह भाव का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्लोक नंबर 9। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। यर्हम भुजाक्षा पससार भो भवान कुरून मधुन्वा तसुहृ दिदृक्षया तत्राद कोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रविम विनाक्षो रिवनस्तवाच्युत। यर्ह्यं भुजाक्षा पससार भो भवान कुरून मधुन्वात सुहृदिदृक्षया तत्राद कोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रविम विनाक्षो रिवनस्तवाच्युत। यर्ह्यं भुजाक्षा पससारभो भवान् कुरून् मधुन्वात सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्धकोटि प्रतमे प्रतिमा क्षणो भवेत् रविम् विनाक्षो रिवनस्तवाश्युत। शब्दात् यर्ह्यम, यर्ही मतलब जब भी, अभी तो आप हमारे साथ हो परंतु जब भी। अम्बुजक्षया, अम्बुजक्षया मतलब आपकी आंखें, अक्ष कहते आंख को, अम्बुज मना कमल के समान, आपके नेत्र तो कमल के समान है, इनको देखते हैं आपकी, आप जब इन नेत्रों से हमारी ओर देखते हो तब तो हमें हमारा सौभाग्य दिखता है। परंतु यर्ह्यं भुजाक्षा पससार भो भवान, पससार का अपससार का मतलब होता है जब आप हमें छोड़कर चले जाते हो, जब आप भाग जाते हो, आप बैठते क्यों नहीं हो हमारे साथ, आपको सदा हमारे साथ रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए आगे बताएंगे। क्योंकि जिस प्रकार मछली बिना पानी की तड़पती है उसी तरह आपके वियोग में हम तड़पते हैं। तो यहाँ पर कह रहे यर्ह्यं भुजाक्षा पससार भो भवान, भो भवान अर्थात अरे आप, भो भवान भवान मतलब भगवान को संबोधित करके कह रहे आप अपने कमल नेत्रों आप से जब हम निहारते हैं तब तो तक तो ठीक है, लेकिन जब आप चले जाते हो तो प्रश्न उठता है। भगवान का घर द्वारिका में है तो भगवान बोलते मैं तो सदा अपने घर में ही रहता हूँ ना, आकर किसी से भी पूछेंगे भाई घर वाला ही कभी कोई बोले आप नहीं होते हो घर पे भाग जाते हो तो बोलेगा मैं घर पे ही होता हूँ ना, किधर जाता हूँ। तो भगवान को बता रहे हैं कि किधर जाते हो। कुरून मदून वाथ सुसुर दृदीक्षया, सुसुहृद का मतलब है सुहृद का मतलब होता है जो आपके मित्र होते हैं, जो आपके बंधु होते हैं। दिदृक्षया मतलब उनसे भेंट करने के लिए, और आपके सुहृद आपके बंधु केवल यहाँ पर द्वारिका में नहीं है, कहाँ कहाँ है, कुरुन मधुन। कुरुन का मतलब है कि कुरुवंश में अर्थात हस्तिनापुर में, और उसके अलावा मधुन, मधुन का मतलब है मधुबन यानी ब्रजवासी। यहाँ पर ये मतलब बताया जा रहा है कुरुन का मतलब होता है जो राजा कुरु के वंशज है वो सब आपके मित्र हैं, और मधुन का मतलब होता है मथुरा या ब्रजभूमि के वासी। यहाँ पर ये बात सिद्ध हो रही है कि भगवान मथुरा जाया करते थे उन अपने बंधुओं से मिलने के लिए, अपने मित्रों से मिलने के लिए जाया करते थे। तो ये कह रहे हैं, तभी तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि द्वारिकावासी भगवान को कहते हैं कुरुन मधुन वात सुहृद दिदीक्षया, उनको देखने के लिए जब आप जाते हो, कभी हस्तिनापुर चले जाते हो, कभी मधुबन मथुरा इत्यादि चले जाते हो, तत्राद कोटि प्रतिमा क्षणों भवित। तत्रात उस समय क्या लगता है, अब्द कोटि, अब्द यानी करोड़ों जो वर्ष होते हैं उसके समान लगता है, प्रतिमा, प्रतिमा मतलब उसके सदृश लगता है, करोड़ों वर्षों के समान लगता है। क्या क्षणों भवेत, एक क्षण होता है ना वो भी हमें लगता है करोड़ों करोड़ों वर्ष हो जाते हैं, मतलब समय बीतता नहीं है। एक दिन के लिए जब आप जाते हो तो आप ये मत सोचा करो कि हमको वो एक दिन लगता है, करोड़ों वर्ष लगते हैं हमें एक एक क्षण बिताने में, बहुत कठिन लगता है। आप जब भी जाते हो तो हमें, हमारे लिए जीना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर उनका कहने का अभिप्राय यही है कि आप हमें छोड़कर मत जाया करो। वास्तव में भक्तों, एक भक्त को केवल एक ही दुख होता है, और एक ही दुख होना चाहिए कि मैं कृष्ण से दूर क्यों हूँ। हर वो क्षण हमारी बदनसीबी है। हमारा अगर एक भक्त का यदि कोई दुख करने का कोई कारण है तो केवल यही कि मैं क्यों कृष्ण से दूर हूँ। अभी देखो ये द्वारिकावासी भगवान इतने समय के बाद आए हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कहते कि हमें ये दे दो वो दे दो, बस मांगते हैं तो केवल इतना कि आप अपने दर्शनों से वंचित मत किया करें, बस आप हमारे साथ रहा करें। और अगर आप चले जाते हो तो हमें कैसे लगता है, रविम विनाक्षो रिवनस्तवाच्युत। रविम विना, रवि कहते हैं सूर्य को, विना मतलब उसके बगैर, अक्षणों। अभी देखो हमारे पास नेत्र है तो हमें क्या ऐसे गर्व से हम कहते हैं कि हमारे नेत्रों से हम कार्य करते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों पर गर्व होता है ना हमें कि हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, हमारी आत्माओं आंखें इन सब से हम काम कर रहे हैं। परंतु हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि भगवान यदि अपनी कृपा उनके ऊपर, अपनी कृपा के द्वारा उनको सहायता ना करे तो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर बहुत ही सुंदर बताया, रविम विनाक्षों। अब देखो नेत्रों से हम देखते हैं तो कितना गर्व है कि हमारे कोई किसी को देखते हैं, किसी की आईसाइट वीक होती है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये आंखें केवल तभी देख सकती हैं जब इसको कोई ना कोई भगवत प्रकाश प्राप्त हो। अब देखो अगर कहीं पर एकदम अंधेरा हो, सूर्य प्रकाश नहीं हो, एकदम डार्क अंधेरा हो, तो हमारी आंखें भले हो एकदम सही हो, आईसाइट भी सही हो, तो फिर वहां पर हम कुछ नहीं देख सकेंगे, कुछ दिखेगा नहीं, अपना हाथ भी नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से या तो इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी को भी अगर हम डीप जाएं तो ये भगवत कृपा ही है, भगवान की दी हुई वस्तुओं से, जैसे जल से, सूर्य से, या फिर इन वस्तुओं को इकट्ठा करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये जो भी है वो केवल हमारी सारी इंद्रियां केवल और केवल कृष्ण की कृपा के कारण ही कार्य करती हैं। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब और सब कृष्ण के कृपा के कारण ही हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कृष्ण अपनी कृपा को खींच लें तो फिर न हम किसी काम के रहेंगे और न ही हमारे शरीर या हमारी इंद्रियां किसी काम की रहेंगी, अर्थात आत्मा और ये भौतिक शरीर केवल और केवल कृष्ण कृपा पर ही निर्भर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बगैर आंखें अगर हों तो भी उन मतलब ना होने के बराबर है, सूर्य से रहित नेत्र किसी काम के नहीं है, उसी तरह रिव नस्त नस्त वाच्युत हे अच्युत, आपके बगैर भी हम इसी तरह से बेकार हैं। मतलब आप नहीं हो तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के बगैर आंखें व्यर्थ हो जाती हैं, उसी तरह आपके बगैर हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। अनुवाद, हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ वर्षों के तुल्य लगता है, करोड़ वर्षों के तुल्य प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें उसी तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछड़ी गई हों। सॉरी, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछड़ गई हों। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान को साबित करके दिखाएंगे। कोई बोलता नहीं, वो भगवान कैसे हो सकता है जो नेत्रों से दिखता नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन इंद्रियों के द्वारा हम कोई भी सही निर्णय कैसे लगा सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं है, वे कतिपय परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती हैं। उदाहरणार्थ हमारी आंखों को लीजिए, जब तक सूर्य प्रकाश रहता है हमारी आंखें कुछ सीमा तक लाभप्रद होती हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आंखें व्यर्थ हो जाती हैं। आदि भगवान होने के कारण श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की जाती है। इनके बिना हमारा सारा जीवन झूठा या अधूरा है। इसी तरह जिस तरह सूर्य का विलोम दूसरा पक्ष अंधकार है, उसी प्रकार कृष्ण का विलोम माया है। यानी अगर सूर्य के सामने हम हैं तो हमें सब कुछ दिखता है, परंतु अगर सूर्य दूसरी ओर हम चले जाते हैं सूर्य के या सूर्य जब अस्त हो जाता है तो अंधकार हो जाता है। उसी तरह कृष्ण के साथ है, कृष्ण के शरण में है तो ज्ञान है, अगर कृष्ण से वियोग है, कृष्ण के साथ नहीं है तो अंधकार है। उसी प्रकार कृष्ण का विलोम माया है। माया ऐसे कहते हैं, श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। तो अगर हम कृष्ण के साथ रहें तो सूर्य के समान संपूर्ण ज्ञान स्वतः हमारे हृदय में प्रकाशित होता रहेगा, लेकिन कृष्ण से दूर होकर जाए सारी संसार के जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ लें लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं करें तो समझो माया में है। कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते, इसलिए आवश्यक यह है कि हम सदा भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आप अगर कृष्ण के समक्ष रहोगे, कृष्ण के समक्ष रहने का क्या अर्थ है कि कृष्ण के नाम के समक्ष रहा। यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहेंगे और भगवान की इन सुंदर सुंदर पवित्र लीलाओं को श्रवण करते रहेंगे श्रद्धा के साथ, तो फिर क्या होगा, समझो हम भगवान के साथ रह रहे हैं। तो क्या होगा कि तभी यही भक्ति है कलयुग में, और भगवत की कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं होते। और जब इस तरह से हम करते रहेंगे भगवान की कथाओं का श्रवण प्लस भगवान के पवित्र नाम का जप, तो फिर हम कभी भी भगवान से दूर नहीं होंगे, और दूर नहीं होंगे मतलब अज्ञान के अंधकार में या माया के वश में कभी नहीं होंगे, जिससे हम अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों समेत भगवान को भी देख सकते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10.10 में बहुत सुंदर बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम्, जो प्रेम से सदैव मेरा भजन करता है, भजन मतलब मेरे बारे में सुनता है, मेरे पवित्र नाम का जप करता है, तो उसको मैं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांतिते, क्योंकि तुम्हारी ये जो प्रेजेंट अकल है उससे मुझे ना समझा जा सकता है और ना ही मेरे विषय में जाना जा सकता है, तो फिर मैं उसे अपनी एक दूसरी नई अकल देता हूँ, नई बुद्धि देता हूँ, अंदर में बैठा हुआ भगवान, और वहीं से हमें चैत्य गुरु के उस समान भगवान हमें चेतना प्रदान करते हैं, कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाकर। भगवान कहते हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिससे हम अपने आप को और विभिन्न शक्तियों समेत भगवान को भी देख सकें। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते, अपने आप को भी भगवान की कृपा के बगैर हम नहीं समझ सकते। तो हमें दुखी होना चाहिए, वास्तव में ये बहुत दुख की बात है, हम कृष्ण से दूर हैं। परंतु यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि सूर्य से रहित नेत्र जिस प्रकार से परेशान हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, आपके बगैर हमारा जीवन भी इस तरह नीरस हो जाता है। लेकिन हम लोग तो केवल जी नहीं रहे हैं, है ना, जी रहे हैं इतना भी सही है, लेकिन केवल जी नहीं रहे हैं बल्कि खुश हैं, आनंद ले रहे हैं, भगवान से दूर होकर, भगवान की भक्ति से दूर होकर। परंतु वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान से वास्तव में स्नेह करते हैं, उनके लिए भगवान की अनुपस्थिति में भगवान यदि उनके नेत्रों से दूर हो जाते हैं तो उनके लिए जीना कठिन हो जाता है। उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं ये द्वारिकावासी के, आप जब चले जाते हो तो हम उस प्रकार तड़पने लगते हैं जिस प्रकार बिना पानी के मछली तड़पती है। तो हमारी आपसे यही एक निवेदन है, हमारा एक ही आपसे प्रार्थना है कि आप हमें छोड़ कर मत जाया करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।